एक बार सब लोग बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कार्काला में जब भी शत्रु का आक्रमण हो गया, तो कार्काला नाम का गांव जो है यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर है, पश्चिम दिशा में है। तो वहाँ पर वेंकट रमणा भगवान की मूर्ति थी, और वो वेंकट रमणा भगवान की मूर्ति जो है वो शत्रु के आतंक से बचने के लिए लेकर आए, और यहाँ पर उन्होंने मुल्की में एक कुएं में डाल दी उसको, और सब लोग भाग गए जान बचाने के लिए। फिर युद्ध शांत हो गया और सब लोग स्थिर सावर हो गया। तो कार्काल के जो पुजारी थे वेंकट रमण के, वो आए कुएं में, उन्होंने बहुत ढूंढा कुएं में, उनको कुछ नहीं मिला, बड़े निराश हो गए वो, और चले गए कार्काल वापस दुखी होकर। फिर मुल्की के भक्तों ने ढूंढा तो तुरंत उनको मिल गए। तो जब मुल्की के भक्तों ने ढूंढा और उनको मिल गए, तो कार्काल के भक्तों को पता चला कि मिल गए, तो वो भाग के आए, और फिर उनका वाद विवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा, आपने ढूंढा आपको नहीं मिला, तो आपके कैसे हो सकते हो, भगवान की ऐसी इच्छा है कि वो हमारे हो जाए। तो नहीं, वो हमारे हैं, हमने डाला था उनको कुएं में। ऐसे करते बहुत वाद विवाद हुआ, और वाद विवाद का कोई निर्णय होने का चिन्ह नहीं था। दोनों पार्टी जो है वो क्या कहते हैं, माघार, मुझे क्या है, पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फिर एक दिन रात को स्वयं वेंकट रमण जी दोनों पार्टियों के स्वप्न में आए, खास करके पहले कार्काल के पार्टी के स्वप्न में आए। उन्होंने बोला कि मुझे अभी कार्काल में नहीं रहना है, मुझे मुल्की में ही रहना है। तो वो शांत हो गए, लेकिन उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि आज से 2 दिन के बाद में एक साधु, अनजान साधु कहीं से आएगा, और ये जो मूर्ति मेरी विग्रह जो आपको आपने यहाँ छोड़ा है, वैसे ही विग्रह आपको वो भेंट में देके जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। तो फिर मुल्की के ब्राह्मणों ने ये विग्रह जो है यहाँ पर स्थापन किए। यहाँ पर जो बीच वाली जगह है ना, उसमें उग्र नरसिम्ह है, उसके ऊपर एक स्टेप है, उस पर वेंकट रमण जी विराजमान है, और भूदेवी श्रीदेवी उनके बाजू में पत्नी के रूप में विराजमान है। तो फिर वहां पर 2 दिन के पश्चात एक साधु आया, और उसने वैसे के वैसे ही वेंकट रमण का विग्रह जो है वो वहां के लोगों को दे दिया, और वहां पर वो स्थापन किया गया। तो आज भी कार्कड़ा मंदिर में वो प्रतिभू मूर्ति स्थापन है। फिर क्या हुआ, वो साफ, सब लोगों को मोबाइल बंद कर देना चाहिए। तो फिर आप जानते हैं, एक समय ऐसा था कि भारत भर में सब जगह आक्रमण हो रहे थे शत्रु के। तो वाराणसी में माधव जी का मंदिर है, आज भी है वाराणसी में, श्री राधे श्याम। हाँ, जय हो, धन्यवाद महाराज, थैंक यू। तो वहां से हमारे संप्रदाय के, हमारे कास्ट के संप्रदाय के दूसरे गुरु माधवेंद्र तीर्थ, वो वहां से औरंगजेब के संकट से बचने के लिए माधव जी का विग्रह लेकर यहाँ पर आए। और दो कारण, उसका नाम बिंदु माधव कहा गया है। तो कहते हैं कि जब अमृत निर्माण हुआ समुद्र मंथन में, तो माधव जी के पास में एक अमृत की बूंद थी, इसलिए उनको बिंदु माधव कहा गया है। दूसरा कारण यह है कि वहाँ पर एक अग्नि बिंदु नाम का भक्त था उनका, बहुत क्या कहते हैं उसको, तीव्र भक्त था उनका। तो भगवान ने उसका नाम अपने नाम में जोड़ दिया, कई जगह पर ऐसे हैं, इसलिए उनका नाम बिंदु माधव हो गया। और बिंदु माधव को लेकर हमारे माधवेंद्र तीर्थ स्वामी जी महाराज 1774 में उनको यहाँ पर लेके आए। कहते हैं कि जब वेंकट रमणा जी यहाँ पर आए ना, तो लोग वेंकट रमण के और उग्र नरसिंह के प्रेम में इतने पागल हो गए यहाँ के लोग। तो हमारे संप्रदाय के गुरु स्वामी जी ने फिर वेंकट रमण के मंदिर हमारे सारे गाँव में प्रस्थापित किए। लेकिन हमारे संप्रदाय के, हमारे कास्ट के जितने भी मंदिर है, सबसे पहला मंदिर ये है मुल्की, और उसके बाद में फिर आप जाएंगे ना, हर एक गांव में वेंकट रमण के मंदिर है। आप उडुपी जाएंगे, उडुपी में भी है, कारकाड़ में भी है, कुंदापुर में है, उगलबेट में है, कल्याणपुर में, आप कहीं भी जाइए, आपको मैंगलोर में है, सूरतकल में है, आप सब जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपको वेंकट रमणा भगवान के मंदिर मिलेंगे। इसके आगे, हाँ ये तो कहानी है, पहले कहानी है 1569 की, 1569 की, 1569 की। अभी जो बिंदु माधव की कहानी बताई वो 1774 की कहानी है। लेकिन 1260 साल में क्या हुआ, इस जगह पर जो राजा थे उनको संतान नहीं हो रही थी। तो उस समय आपको पता है कि गोवा जगह पर हमारे ना हमारे जितने भी कुल देवत हैं वो सब गोवा में हैं, जितने भी हमारे समाज के कुल देव हैं वो सब गोवा में हैं। और हमारा वहाँ पर बहुत ब्राह्मणों का निवास स्थान था, लेकिन वह पुर्तगीज लोगों ने आक्रमण किया ना तो सब लोग भाग गए वहाँ से, दक्षिण में गए, कोई उत्तर में गए, कोई बंगाल में गए। तो उस समय विट्ठल भट्ट जी नाम के एक थे हमारे, वो वहाँ से भागे और मुलिका क्षेत्र यहाँ पर आए। तो यहाँ पर जैन राजा का राज्य था और यहाँ पर बस गए वो। तो वो जैन राजा को पुत्र नहीं था, तो उन्होंने विट्ठल भट्ट जी को बहुत विनती किया कि आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो विट्ठल भट्ट जी के निर्देश में उसने कुछ तपस्या, कुछ व्रत का पालन किया, और जैसे विट्ठल भट्ट जी ने कहा वैसे उस राजा को पुत्र प्राप्ति हुई। तो राजा इतना प्रसन्न हो गया कि विट्ठल भट्ट जी अपने साथ में उनके गुरु ने दिए हुए विट्ठल भगवान को लेकर आए थे, तो उनके छोटे से विग्रह के लिए उन्होंने ये मंदिर बनवाया। तो सबसे पहले यहाँ विट्ठल जी आए इतने बड़े मंदिर में, उसके बाद में उग्र नरसिम्हा आए, उसके बाद वेंकट रमण आए, उसके बाद में बिंदु माधव जी आए। इसका मतलब सभी विग्रह यहाँ बाहर से आए हुए हैं, ये एक विशेषता है। मंदिर यहाँ का है, स्थान पवित्र है, शंभवी नदी का किनारा है, लेकिन सभी जितने ठाकुर जी यहाँ विराजमान है वो सब बाहर से आए हुए हैं। और कहते हैं कि जब माधवेंद्र तीर्थ काशी से निकले बिंदु माधव को लेकर, तो सबसे पहले वो रामेश्वर गए, फिर तिरुपति गए और फिर मुलिका क्षेत्र में आए। वो आंध्रा में है ना, वो आंध्रा से होते हुए यहाँ पर आए, फिर तमिलनाडु में भी गए रामेश्वर में। तो उनके साथ में वो काल भैरव को भी लेके आए। अभी आप देख रहे हैं मंदिर में, अभी आपको देखेगा, देखो वो सब जगह देखो गोल गोल वहाँ पर रखा हुआ है, लाल वाले आसन पे एक पत्थर का गोल रखा हुआ है, और वो सब जगह पर देखो, वहाँ पर भी है, आगे भी मिलेगा आपको, सब जगह मिलेगा। वो गण होते हैं राम, उसको मंदिर के साथ में स्थापना करते हैं। आप भी उडुपी के मंदिर में जाएंगे, अनंतेश्वर के मंदिर में जाएंगे, चंद्रमौलेश्वर के मंदिर में जाएंगे, और जहाँ जहाँ जाएंगे आपने अगर गौर से देखा होगा तो सब मंदिर में ही आपको मिलेंगे। ये भगवान के गण हैं, उसमें से कुछ प्रधान गण भी होते हैं, एक होते हैं काल भैरव, एक होते हैं अग्नि भैरव, उनका एक एक जगह पर स्थान है। तो इस मंदिर में काल भैरव का स्थान है, और काल भैरव जी वाराणसी से आए हुए हैं बिंदु माधव जी के साथ में, और इनका बड़ा महात्म्य है। अभी थोड़ा समझाने को समय कम है मेरे पास, बताता हूँ जितना हो सके उतना बताऊँगा जरूर। अब ये मंदिर का जो महात्म्य है, ये जो महात्म्य है, दत्त जयंती के दिन यहाँ पर उग्र नरसिम्ह की स्थापना की गई थी, तो उसको प्रतिष्ठा पूर्णिमा कहते हैं, हमारे भाषा में कहते हैं प्रतिष्ठा पूर्णिमा। उस दिन अभी 22 दिसंबर को वो उत्सव हुआ यहाँ पर। पूरा जितना भी हमारा जो समाज है ना, उनका नाम है गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज, और यहाँ पर पूरे बेल्ट में वो समाज के ब्राह्मण बसे हुए हैं। तो जितने भी गौड़ ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण हैं वो सभी गांवों से उस उत्सव के लिए यहाँ पर आते हैं, और इतनी यहाँ पर भीड़ होती है उस समय, कहते हैं कि 25,000 नारियल के पानी से उनको अभिषेक करते हैं, और नारियल उसको पीसते हैं ना सब लोग बैठकर, सब जवान लोग बैठ के पीसते हैं, कहते हैं कि इतना नारियल पीसते हैं कि छाती में दर्द होता है उनको पीस पीस के और सभी गांव के लोग मिलकर स्वयं सेवक के रूप में भोजन बनाते हैं, हजारों लोगों के लिए भोजन बनाते हैं, और दिन भर उत्सव चलता है, रथोत्सव होता है, और रात में फिर फायर वर्क्स होते हैं, पूरी रात भर आकाश में पटाखे फोड़ते हैं, मतलब आवाज़ वाले नहीं, वो डिज़ाइन वाले, और सुबह 4 बजे तक वहाँ पर उत्सव चलता है, और वो उत्सव हमारे गांव के लोग कभी मिस नहीं करते। फिर हमारे गांव में एक विशेष चीज़ है कि नरसिंह भगवान का फोटोग्राफ और नरसिंह भगवान की मूर्ति या कैलेंडर या किसी प्रकार की चित्रपट किसी के घर में नहीं होता है। हाँ बोलेगा ऐसा क्यों, ये गांव का अधिष्ठात्री देवता ही स्वयं नरसिंह भगवान है, तो घर घर में फोटो होना चाहिए ना। इसका कारण है कि एक बार जब नरसिंह भगवान यहाँ पर अवतरित हुए, विराजमान हुए, स्थापित हुए, तो हमारे मंदिर में भी और विश्वभर में जहां जहां कृष्ण का मंदिर है वहां वहां नरसिंह जयंती के ऊपर ये ड्रामा करते हैं, करते हैं कि नहीं? कोई नरसिंह बनता है, कोई हिरण्यकश्यप बनता है, कोई प्रहलाद बनता है, फिर वो बहुत जोरदार ड्रामा होता है। हमारी बेटी छोटी थी तभी प्रहलाद का रोल किया था उसने, और आदिकेशव प्रभु ने हिरण्यकश्यप का रोल किया था, बहुत जोरदार ड्रामा हुआ था और उसके कई प्रकार कई बार उसका क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट मतलब किया गया उसको नाटक को। हमेशा हमारे नाटक के समृद्ध उत्सव में एक नाटक एक ही बार हम लोग प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो नाटक इतना सुंदर हुआ था, इतना सुंदर हुआ था कि उसके कई जगह प्रयोग किए गए कई बार। तो इस बार जब यहाँ गांव में पहली बार जब नाटक किया गया ना, तो कोई व्यक्ति हिरण्यकश्यप बना और कोई व्यक्ति भक्त कोई था वो नरसिंह भगवान बना और कोई भक्त प्रहलाद बना, वो ड्रामा शुरू हो गया। सब गांव पूरा इकट्ठा हुआ था, ड्रामा चल रहा था। तो जब नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ उसी समय नरसिंह भगवान का आवेश उस एक्टर के अंदर हुआ। हाँ, वो अपना सुदबुद्ध खो बैठा, उसको तो कुछ पता ही नहीं। उसने सीधे हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया और स्टेज के ऊपर ही हिरण्यकश्यप का जो पात्र था उसका अंत हो गया। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हुआ? जिस तरह से उसने फाड़ा था उनको, मतलब जैसे भगवान ने किया था ना, दो हाथ से फाड़ा, फिर वो हाथ से उसकी आतरी निकाल कर गले में पहनी, वो सब कुछ किया उसने। और बहुत देर के बाद में होश में आया वो, उसको कुछ भी पता नहीं क्या हुआ। तो पुलिस कंप्लेंट हो गई, क्या क्या हो गया, लेकिन ये व्यक्ति तो इनोसेंट था, उसको तो पता ही नहीं क्या हुआ। उसके बाद में ना लोगों को कब विश्वास हुआ इस बात पर कि नरसिंह भगवान का आवेश हुआ, उन्होंने आगे जाकर एक रामायण का ड्रामा किया। वो रामायण के ड्रामा में ये दशरथ बने थे और ड्रामा शुरू हुआ रामायण का। राम का जन्म हुआ, बच्चे बड़े हो गए, फिर वो वनवास गए और दशरथ महाराज रोते 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 उन्होंने प्राण त्याग दिया। ये सीन था ना, एक्चुअली ये एक्टर ने प्राण त्याग दिया उसमें, एक्चुअली ही डाइड। तब जाकर लोगों को ये विश्वास हुआ कि एक्चुअली उनका कुछ उसमें दोष नहीं था, स्वयं ऐसे वो भाव लीन होकर अपना रोल अदा करते थे कि नरसिंह भगवान के रोल में हिरण्यकश्यप फाड़ दिया और दशरथ के रोल में खुद मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस दिन से इस गांव में, घर में, कैलेंडर में, मंदिर में, देवघर में, किधर भी भगवान नरसिंह का फोटो लगाते नहीं। और कहते हैं जो भी लगाते हैं उनके घर में या तो आग लगती है या तो झगड़े होते हैं। ये मुझे कैसा मालूम पड़ा कि मेरे घर पे इस मंदिर की ओर से बहुत अच्छे, यहाँ करके आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ पर भी इतने अच्छे भक्त नरसिंह भगवान के हैं। कई गांव हैं, गांव के गांव यहाँ पे नरसिंह भगवान के भक्त हैं, केवल मुल्की गांव नहीं है, आगे भी बहुत सारे गांव हैं, वो सब जगह पर नरसिंह भगवान को हृदय से मानते हैं और उनके ऐसे भक्त हैं यहाँ पर। वो मेरे घर पर इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कुछ धन लेने के लिए भी आए थे, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, उनका हमने बहुत अच्छा सत्कार किया। तो वो ऐसे बैठे बैठे ही नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप की लीला के बारे में इतना उत्साह से वर्णन कर रहे थे ना, जैसे कि खुद एक्टिंग कर रहे थे, उसके वजह से बोल रहे थे, उसे बोल नहीं रहे थे, एक्चुअल जैसे कि ड्रामा ही कर रहे थे, वो एक्चुअल कर रहे थे। उसका प्रेम देखकर मैं हैरान हो गया। तब मुझे उन्होंने बताया कि हमारे गाँव में ये ड्रामा वगैरह नहीं होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे हुआ था हमारे गाँव में। तो अद्भुत कहानी है सब ये, और एकदम सीधे साधे दिखने वाले लोग जो है ना, जब नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप के बारे में बोलना शुरू कर देते ना, फिर आपको लगेगा कि ये तो उनके घर के लोग हैं, ऐसा लगेगा आपको, उनके परिवार के लोग हैं। जैसे आप कैसे अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, वैसे वो नरसिंह भगवान, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद के बारे में बात करते हैं, आवेश में आकर प्रेम से बात करते हैं। जिस पर आपको गौरव होता है ना, जिसमें आपको नाज होता है, उसके बारे में कैसे बात करेंगे आप, वैसे वो नरसिंह भगवान के बारे में बात करते रहते। तो ऐसा हमारे गांव का ये अद्भुत गौरव है। ये जो नरसिंह भगवान का ये जो मंदिर है वेंकटरमणा का, अंदर जाएंगे तो आपको, आपने देखा अंदर जाके चार मंदिर मिलेंगे। जहां पर भी हमारे गुरुजी ने ये मंदिर बनाया है, जहां पर भी मंदिर बना है, उसका स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा। आप कहीं भी जाएंगे, साइज छोटा कड़ा होगा लेकिन स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा। एक तरफ गणेश जी का मंदिर होगा, आगे मुड़ेंगे, राइट टर्न लेंगे तो आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। सीक्वेंस अलग हो सकता है, गणेश जी फिर हनुमान जी, और आगे टर्न करेंगे और एक टर्न लेंगे तो फिर आपको गरुड़ जी का मंदिर मिलेगा, फिर और आगे जाएंगे तो देवी का मंदिर मिलेगा। अक्सर हनुमान जी और गरुड़ जी आपने सामने होते हैं, मतलब अगर आप ऐसे प्रवेश करेंगे सामने भगवान रहेंगे ना, तो यहाँ पर आपको हनुमान जी मिलेंगे और यहाँ पर गरुड़ जी मिलेंगे, और दो कोने में आपको गणेश जी और देवी मिलेगी, ऐसा सीक्वेंस मिलेगा आपको। और अनंतेश्वर में भी यही सीक्वेंस है। अभी आप गए थे ना, कौन से मंदिर में गए थे, वो यरमल में गए थे ना, उधर भी वही सीक्वेंस है। उधर वराह गणेश का मंदिर जहाँ बैठा था ना मैं, उसके पीछे वराह गणपति का मूर्ति स्थापन किया गया था। रक्तेश्वरी का भी वहाँ पर, मैं बताना भूल गया, वहाँ पर रक्तेश्वरी देवी का भी दो मंदिर थे ना एक जगह पर, एक गणेश जी, एक दो मंदिर थे उसमें, रक्तेश्वरी देवी का मंदिर था एक, मतलब एक गणेश जी थे, एक वराह गणेश जी ऊपर थे। तो ये हमारे गांव का मंदिर का एक फॉर्मेट है। अभी मैं आपको एक अद्भुत बात बताने जा रहा हूँ, हाँ, मुझे उसके बारे में प्रश्न मत करना, ऐसे क्यों, ऐसे कैसे, मुझे पता नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक नायक परिवार है, वो परिवार के प्रमुख व्यक्ति जो हैं, उनके शरीर में बुधवार को और शनिवार को ये काल भैरव जी प्रवेश करते हैं। उनका एक समय होता है, कुछ विधि करते हैं, वो स्नान वान करके आते हैं सुबह, और सबके सामने उनके शरीर में वो आवेश होता है, और आवेश होने के बाद में वो उनको खुद की सुध-बुध रहती नहीं है, और वो काल भैरव जी उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, और गांव के सभी लोग आते हैं उस समय और अपनी अपनी समस्या उनको बताते हैं। यहाँ पर इतना मैंने गांव का, हमारा जो कल्चर है ना, वो इतना सुंदर कल्चर है कि कभी भी लोग अपने गांव के बाहर अपनी समस्या लेकर जाते नहीं थे। उनके ग्राम में देवता जो है ना, वही उनका सब कुछ है, पूरा सरेंडर है उनके लिए, पूरा समर्पण है। कुछ भी समस्या हो, या बेटे की शादी नहीं हो रही हो, या नौकरी नहीं मिलती होगी, या धंधा ठीक से नहीं चल रहा हो, या कोई बीमार हो गया हो, छोटा मोटा और बड़ा कोई भी समस्या होगी, तो वो ग्राम्य देवता के पास लेके जाते हैं, और वहीं पर अपना बोलते हैं ना गाराणा, मतलब क्या है, अपना गाराणा मतलब अपना कंप्लेंट रखते हैं वहाँ पर जो भी है, और वहीं से उनका उत्तर मिलता है, और जो भी उत्तर मिलेगा आपको, पसंद हो या नापसंद वाला, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन गाँव के बाहर जाकर अपनी समस्या किसी और मंदिर में जाकर बोलते नहीं। जो गाँव का मंदिर है वही उनका सर्वस्व है, और ये हमारे देश का कल्चर है। आज हम लोग सब भूल चुके हैं, ना ग्राम्य देवता है, ना वन्य देवता है, ना कुल देवता है, ना कुछ नहीं, सब कुछ छोड़कर हम लोग विदेश भाग गए। और वहां जाकर हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कोई भरोसा नहीं उसका। ये हमारा मूल जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती हमारी, हमारा ऐश्वर्य है, हमारा बल है, सब हम खो चुके हैं, इसलिए भटक रहे हैं हम लोग। यहाँ तक कि जमीन पर पाँव भी रखते नहीं हम लोग, तो चिंतित रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि नंगे पैर भूमि पर चलते ही नहीं, कभी जूता पहनकर चलते हैं या तो टाइल पर चलते हैं, भूमि का स्पर्श नहीं होता है, गोबर का स्पर्श नहीं होता है, परेशान रहते हैं हम लोग सब लोग, क्योंकि हमारे मूलभूत संस्कृति को हम लोग सब छोड़ चुके हैं। अब अभी भी, आज भी गांव में आइए, यहाँ के गांव का हर एक व्यक्ति रोज मंदिर में आता है और दर्शन लेता है भगवान का। आप सुबह आके बैठिए यहाँ पर, सारे लोग काम पे जाने के पहले मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, प्रसाद लेते हैं और काम पे चले जाते हैं। काम से लौट के आते हैं, सीधे मंदिर में आते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, सबको मिलते हैं, बात करते हैं, फिर चले जाते हैं। और सबके मंदिर में सेवा है। ये सब घर देख रहे ना हमारे, आप देखा है, ये बहुत एकड़ों एकड़ों का जमीन है, ये जहाँ पर एंट्री किया ना हम लोग ने, वहाँ से शुरू होता है, कई सर्कल है इसके अंदर, सबके बीच सर्कल में भगवान है, और उसके भी चार मंदिर, उसके अंदर भगवान है, उसके अंदर तीन दरवाजे हैं, उसके अंदर भगवान विराजमान है। तो जितने सर्कल यहाँ पर हैं, वहाँ सभी पुजारियों का घर है यहाँ पर, और यहीं पर रहते हैं, और उनका टर्न बाय टर्न सेवा आती है भगवान की। वो जो पूजा में सेवा कर रहे थे ना, वो सब बदले हो जाते। एक बात मुझे बताना जरूरी है आपको, कि हमारी संस्कृति में एक महत्व है, हमारे संस्कृति में मंदिर में दीपक लगाते नहीं है, मतलब लाइट नहीं लगाते, ट्यूबलाइट या बल्ब लगाते नहीं। हमारे संस्कृति में, हमारे गांव की नहीं, भारत की संस्कृति है ये, केवल दीपक के प्रकाश में ही भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए आरती के दीपक में भगवान का दर्शन करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। आपने देखा होगा ना, वो आरती ऐसे घुमाते हैं तो भगवान के विग्रह दर्शन होते हैं उनके, वो दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो हम लोग लाइट लगाते हैं, फोकस लगाते हैं, ऊपर नीचे सब कुछ करते हैं, लेकिन सही भगवान का दर्शन जो है ना, वो आरती के समय ही होता है, क्योंकि बड़े बड़े कछुआ के आकार के दीपक, कभी मछली के दीपक, कभी इसके दीपक, वो लगा के भगवान के ऊपर बहुत प्रेम से घुमाते हैं, तो वही उसका दर्शन सब लोग करते हैं, और वो उलुल आवाज है ना, उलुलेशन, वो भी करते हैं। पवित्र ध्वनि है वो, स्वर्ग से, वैकुंठ से आई हुई ध्वनि है वो स्त्रियों को केवल उसका अधिकार है करने का। तो हम देख रहे थे अभी ना, भगवान के दर्शन हो रहे थे उसमें। तो ऐसा हर बुधवार को और शनिवार को होता है उत्सव, यहाँ पर सब गांव इकट्ठा होता है, सबके सामने प्रश्न पूछे जाते हैं और वो जो भी कहते हैं ना वो उसके वाद विवाद नहीं होता है। अरे ऐसा क्यों, मुश्किल है, कैसे करूँ, ऐसे नहीं, वो कहते हैं उसको तंतोतंत फॉलो किया जाता है, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी कुछ। और लोग अभी आजकल वो पूछते नहीं है कि मेरी भगवान का भजन नहीं होता है, नामस्मरण नहीं होता है, भगवान को भूल जाता हूँ, वो प्रश्न नहीं पूछते हैं। खाली यही पूछते हैं मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मुझे दो जॉब मिल रहे हैं, एक विदेश में एक देश में, कौन सा ले लूँ, ऐसे से सवाल पूछते हैं। लेकिन मूल इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सवाल कोई भी हो पूछते केवल यहीं पर है, शॉपिंग नहीं करते हैं। अच्छा उत्तर कहाँ मिलेगा वहाँ तक पूछते जाते नहीं, हम लोग कैसे करते हैं, हमारे को क्या उत्तर चाहिए, वो जब तक कोई देगा नहीं तब तक हम लोगों को पूछते रहेंगे। और जो हमें अच्छा लगेगा ऐसा उत्तर देगा, मतलब ये सही उत्तर है, ये हम लोग लेंगे उसको फॉलो करके, इसको कहते हैं शॉपिंग। शॉपिंग नहीं करते हैं, इनका एक ही शॉप है, यहाँ पर आते हैं, जो भी कहते हैं वहाँ रखते हैं समस्या को, यहीं का उत्तर लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और यही जीवन का परिपूर्णता है। एक भगवान, एक गुरु, एक मंत्र, एक शास्त्र। एक मंत्र भगवान का नाम, एक शास्त्र भगवद गीता, एक गुरु और एक भगवान कृष्ण, और सब जगह शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी को श्रद्धा होनी चाहिए, 10 जगह पूछेंगे ना 10 उत्तर मिलेंगे आपको। व्यक्ति तित क्या प्रकृति, हर व्यक्ति का अपना विचार करने का ढंग अलग होता है, तो समस्या का समाधान भी अलग तरीके से करता है, और आप उसमें क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को गुरु होना जरूरी है, और वो गुरु जो भी कहेंगे आपको, वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, श्रद्धा के साथ उसको फॉलो करना चाहिए, फिर हमारा जीवन धन्य है। कोई यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, 50 बार लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति को पूछो, एक बार पूछो, उत्तर लो, खत्म, डोंट वेस्ट टाइम। तो दर्शन से मैं क्या सीखता हूँ, मुझे क्या सीख मिलती है, लोगों की श्रद्धा कितनी बलवत्तर होती है, और श्रद्धा होने पर मनुष्य का जीवन कितना आसान हो जाता है, ये भी मैंने देखा है। श्रद्धा नहीं होगी तो आप 10 लोगों को पूछेंगे, 10 जगह सलाह करेंगे, लेकिन श्रद्धा होने के बाद एक ही जगह पूछेंगे, और बहुत ही कम समय में, बहुत ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए, कन्फ्यूज ना होते हुए आपको उत्तर मिल जाता है, पसंद हो या ना पसंद हो, पहले से कहा गया है वो फॉलो करना है। लाइफ इज़ वेरी इजी, इसलिए गांव का जीवन बहुत सरल होता है, शहर का जीवन बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। अरे डॉक्टर बोलेगा ना आपको ऑपरेशन करना है, तो भी 3 डॉक्टर के पास सलाह करेंगे, सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, और फिर 3-5 ओपिनियन में अपना श्रद्धा नहीं होता है, फिर भी मजबूरी से कुछ ना कुछ फॉलो कर देते हैं। जो फॉलो करते हैं उसमें भी श्रद्धा नहीं है, 5 लोगों पर भी श्रद्धा नहीं है, मतलब जीवन कितना कॉम्प्लिकेट हो गया, कितना समय बर्बाद हो गया, कितना पैसा बर्बाद हो गया, कितना मति बर्बाद हो गई। गांव का जीवन ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल और सरल है, ये मैंने मेरी आंखों से देखा है, और लोगों की इतनी श्रद्धा है भगवान के ऊपर। हमको भी शहर में रहते हुए भी ऐसे सरलता से जीवन बिताना चाहिए, एकदम सिंपल, तो आपके जीवन में समाधान आएगा, शांति आएगी, आनंद आएगा, खुशी आएगी, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, क्योंकि आप अगर असंतुष्ट रहेंगे तो बच्चे भी वैसे ही परवरिश पाने वाले हैं। माता पिता असंतुष्ट तो बालक भी असंतुष्ट, 10 जगह सलाह कर रहे हैं माता पिता तो बच्चा भी आगे जाकर वही करेगा, तो आप एक लेगेसी दे रहे हैं, धरोहर बच्चों को दे रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही बच्चे फॉलो करेंगे, अगर आप भजन कर रहे हैं तो भगवान का भजन कर रहे हैं तो बच्चे भी भजन करेंगे। इस तरह से हमारा मूलिका क्षेत्र इतना वैभव है, यहाँ पर सोने का रथ है, यहाँ पर चांदी का रथ है, और ये सब यहाँ पर चलते रहता है, हर एक दिन शाम को आएंगे तो आपको रथ यात्रा मिलेगी, बड़ा आनंद होता है यहाँ पर, सब कुछ एक ही गांव के अंदर है, आनंद का है, समय है, उत्सव है, जो भी सेवा है सब गांव के अंदर है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। और कौन सी कहानी बची, हाँ 2 कहानियाँ रह गई, वो 2 कहानियाँ ऐसी है कि ये क्षेत्र जो है ना इतना समृद्धि और वैभव वाला क्षेत्र था कि त्रेता युग में रावण जब पुष्पक विमान लेकर आए थे ना तो इस जगह पर लंका समझ के उतर गए थे, इतना वैभव था, उसको ऊपर से लगा कि अभी लंका आ गई, उतर गए तो कहते हैं तो मानव लोग रहते, राक्षस नहीं यहाँ पर, तो उसने यहाँ पर एक शिवजी का स्थापना किया, उसका नाम क्या है, पडुपानाम्बरू में शिवजी का मंदिर उसने स्थापन किया, जहाँ पर वो जैन राजा था ना, जो हमारे स्वामी जी वहाँ पर गए थे, उसी जगह पर वो शिव जी का मंदिर है। फिर हनुमान जी जब क्या वो संजीवनी लेकर आए थे ना, तो वो भी लंका समझकर यहां उतर गए थे। तो हनुमान जी ने देखा कि राक्षस तो नहीं, यहां पर सब देव मनुष्य रहते हैं, तो उन्होंने इसको नाम दिया वोड़ा लंका, मतलब अंतर लंका, लंका से भी अधिक सौंदर्य जिस जगह पर है, इसलिए मुल्की को और एक नाम है वोड़ा लंका। तो यहां पर हनुमान जी के चरण भी लगे हुए हैं, रावण भी आए हुए हैं यहां पर। और हाँ, वो बताना रह गया मुझे कि जब भी वो स्वामी जी यहां पर मूर्ति लेकर आए ना, आगे कहानी मैंने बताई नहीं आपको, समय खत्म हो गया था उस समय। तो स्वामी जी जब यहां पर आए तो वहां पर क्या हुआ, राजा का तो महल जल गया ना, तो राजा ने उसको रिपेयर करने का कोशिश किया। तो रिपेयर करने के लिए जो भी लकड़ी वो अपने गांव के बाहर से लाते थे तब तो वो अच्छी होती थी, लेकिन गांव के अंदर आने के बाद तुरंत ही जली हुई लकड़ी जैसे बन जाती थी वो, बाहर से अच्छी लकड़ी, अंदर गांव में प्रवेश किया तो जली हुई लकड़ी, तो रिपेयर कैसे करेंगे। बहुत देर प्रयास किया, यही देखा तो अपने ज्योतिष को बुलाया और पूछा, तो उन्हें कहा कि आपने वैष्णव का अपराध किया है, इसलिए आपका महल कभी भी उनके माफी करने के बदले कभी भी रिपेयर नहीं हो सकता है। तब वो राजा यहाँ पर भाग के आए हैं विजयेंद्र तीर्थ महाराज को मिलने के लिए, उनके चरणों में गिरे हैं। और महाराज जी को पहले से ही ये अंदर से भाव हो गया था कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने हृदय से ही माफ कर दिया था उनको, माफ कर दिया उनको राजा ने, माफ करते ही वो महल रिपेयर हो गया। वो जले हुए लकड़ी का अंदर प्रवेश करना, अच्छी लकड़ी का, वो सब बंद हो गया। और उन्होंने पहले महाराज जी से माफी मांगी, अपराध क्षमा हो गया, फिर महल का रिपेयरिंग हो गया। फिर दोबारा आए वो, उन्होंने कहा कि मैंने, आप मेरे घर पे स्वयं आए थे इतने महान विभूति, और आप भगवान को भी लेकर आए थे, यानी कि भगवान और भक्त ये कॉम्बिनेशन दोनों आप मेरे घर पे स्वयं आए थे बिना बुलाए, फिर मैंने आपको ठुकरा दिया था। मेरे आपको इच्छा है, विनती है कि मैंने गलती की थी, मैं आप और आपके भगवान को दोनों को हमारे गाँव में दोबारा बुलाना चाहता हूँ। आप आइए, पूरे गाँव को लेकर आइए और हमारे यहाँ वन भोजन कीजिए, अपने भगवान का अभिषेक कीजिए, उत्सव मनाइए, पूरा दिन भर आप हमारे तरफ से उत्सव मनाइए। तब तक तो स्थापना हो चुकी थी। फिर हमारे गुरुदेव जो है विजयेंद्र तीर्थ महाराज, वो बिंदु माधव, जो बिंदु माधव स्थापन किए ना, वो आज भी इन सबके उत्सव मूर्ति है। जब रथ यात्रा वगैरह होती है तो बिंदु माधव जी रथ पे आरूढ़ होते हैं, पालकी होती है तो पालकी में भी बिंदु माधव जी बैठते हैं। तो बिंदु माधव जी को लेकर फिर ये गए हैं उस गाँव में, हाँ क्या नाम उसका, पड़ू पानामबुरु। और राजा ने उनको उसी उस तिथि में उस दिन बहुत भव्य स्वागत किया है, बहुत बढ़िया भोजन दिया है, बहुत उत्सव अभिषेक मनाया गया है। उत्सव में क्या क्या होता है, डांस होता है, नाटिकाएं होती है, नृत्य होता है, भजन गाते हैं, भोजन करते हैं, आरती करते हैं भगवान का, बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। तो आज भी उस तिथि को यहाँ से लोग उत्सव मूर्ति को लेकर उस गाँव जाते हैं और हर साल में एक बार वहाँ पर उत्सव होता है। अब ये उत्सव चलता रहा, राजा भी बहुत खुश हो गया, महाराज भी बड़े खुश हो गए। लेकिन एक साल क्या हुआ, जब ये उत्सव मूर्ति को लेकर ये लोग यहाँ से उस गांव की ओर जा रहे थे तो बीच में भी बहुत गांव लगते हैं, बहुत खेत लगते हैं। तो एक व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया, अरे क्या है इतनी बड़ी भीड़ जा रही है, हमेशा हमारे खेत को ऊपर चल के जाते हैं, खेत का नुकसान करते हैं। तो उसने क्या किया, अपने खेत की बाउंड्री के लिए कांटे लगा दिए उसने, ताकि वो लोग वहाँ ना जाएँ खेत को ऐसे पैरों से कुचलते हुए। उसके वजह से बहुत सारे भक्त जख्मी हो गए, लेकिन क्या करें, जख्मी हो गए तो चले गए। वो जख्मी हो गए तो जो व्यक्ति का जो खेत थे उसने कांटे लगाए थे, उसके घर में आग लग गई और घर खाक हो गया। तो वो भी होश में आया, अरे बाप रे, ये तो बड़े बिंदु माधव का अपराध किया हमने। तो जब लौट के आए तो उन्हें सब कांटे वाटे निकाल दिए और सब भक्तों को अपने घर पर बुलाया और सत्कार किया। तो आज ये उत्सव के समय वहाँ पर भी लोग जाते हैं, वहाँ पर भी सत्कार होता है, पीढ़ी जात लोग उनको बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको सत्कार करते हैं। भगवान के चीज़ों को आसानी से मत लेना, डोंट टेक कृष्णा एंड हिज डिवोटीज लाइटली। भक्त लोग तो अपना वैभव वगैरह दिखाने का प्रयास नहीं करते कि मैं शक्तिमान हूँ, भगवान नाराज हो जाएंगे, आप मेरा अपराध करेंगे, ऐसा भक्त लोग तो गर्व नहीं करते हैं। लेकिन भक्तों का अपराध करने पर भगवान वो अपराध बड़ी गंभीरता से लेते हैं, ध्यान रखना इस बात। भक्त कितना भी आपके दृष्टि से नया नया हो, नवसिखिया हो, अभी अभी आया हो, जूनियर हो, तथा कथित जूनियर हो, जूनियर हो या सीनियर हो, आपकी दृष्टि से जूनियर सीनियर है, भगवान की दृष्टि क्या है, किसको पता है कितने जन्मों का भक्त होगा भगवान का। हमारे सामने कल भक्त बना होगा इस जन्म में, इसलिए भगवान के भक्तों का कभी भी जाने अनजाने में अपराध नहीं करना चाहिए, जानकर भी नहीं करना चाहिए, अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। तो भगवान का कोप जो है वो हमारे पर आएगा, चाहे भगवान के भक्त आपको माफ करेंगे, भगवान नहीं माफ कर सकते, लेकिन माफ करेंगे जब भगवान के भक्त खुद माफ करेंगे ना। समझो आपने भक्त का अपराध किया और भगवान से आके माफी मांगी, भगवान माफ नहीं करेंगे आपको। भगवान कहेंगे जाओ जिसका अपराध किया उसी से माफी मांगो, वो माफी करेंगे तो हमारी माफी उसमें हो गई। फिर जब तक वो भक्त के चरणों में आप नहीं गिरेंगे और माफी नहीं मांगेंगे तब तक भगवान आपको माफ नहीं कर सकते, वो छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि भगवान खुद से भी अधिक अपने भक्तों पर प्रेम करते हैं। आप एक बार भगवान का अपराध, भगवान को एक गाली दे सकते हैं, बोला ठीक है कोई बात नहीं, बहुत गाली देते हैं, रावण ने भी दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके भक्तों को गाली देते हैं तो फिर वो नहीं समझ। इसलिए सबसे घाटे का सौदा जीवन में क्या है, वैष्णव अपराध। अगर किसी को बुद्धि है तो उसको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा नुकसान वाला सौदा जो है ना वो भक्तों का अपराध है। उनको वाणी से या शरीर से या भावना से या धन से किसी भी प्रकार से कष्ट हो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखना चाहिए। अपराध किसको कहते हैं, जो करने से सामने वाले व्यक्ति का दिल अगर दर्द में आ जाए तो वो अपराध के नाम में गिना जाता है। तो भक्तों को हमेशा प्रसन्न करने का प्रयास करो, नहीं हो सके तो कुछ मत करो लेकिन दुख मत दो, जाने अनजाने में भक्तों को भी दुख नहीं देना चाहिए। तो ये सारे मुल्की की सुंदर सुंदर कहानियों से हमें बहुत सारी सीख मिलती है और कैसे कैसे भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ चल के आते हैं, ये भी एक अजीब अनुभव है हमारे लिए। तो श्री उग्र नरसिंह भगवान की जय हो। अभी आप क्या करिए, मंदिर बंद होने के पहले मंदिर में जाइए और वहाँ पर एक चित्रपट है बड़ा, वो कहाँ है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी जहाँ पर खड़े थे ना आरती में, प्रभु जी एक जगह खड़े थे आरती में ऊपर, इनकी पत्नी इस तरफ थी और ये भी इस तरफ थी लेकिन वो उस तरफ खड़े थे, उस तरफ पे दीवार पे वो चित्रपट है। उधर क्या क्या देखेंगे आप, उधर आप वेंकट रमन देखेंगे दो पत्नियों के साथ, नरसिंह भगवान देखेंगे, इतने से विग्रह है, एक पैर पर दूसरा पैर रखा हुआ है, उस पैर पैर के बनाए हुए कुर्सी पर हिरण्यकश्यप को रखा है, दो हाथ से उसको पकड़ के रखा है, एक सर की ओर एक पांव की ओर, दो हाथ से उसको फाड़ रहे हैं और दो हाथ से उसकी माला गले में पहना रहे हैं, ऐसा भयंकर दर्शन है। तो उसके बाद में आपको व्यास देव की मूर्ति मिलेगी, व्यास देव जी हमारे संप्रदाय के बड़े आचार्य माने जाते हैं। फिर आपको विट्ठल की मूर्ति मिलेगी, क्योंकि जो ब्राह्मणों को, अभी एक और कहानी रह गई इसके अंदर, एक समय पर ना कश्यप मुनि आ पर आए, कश्यप मुनि नहीं कोई एक बड़े मुनि आए और उनको राजा ने यहाँ पर रहने के लिए विनती किया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यहाँ पर कोई अच्छे ब्राह्मण नहीं है और अच्छे भगवान की सेवा भी नहीं हो रही है, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर। तो राजा ने उनको विनती किया आप रुकिए मैं अच्छे ब्राह्मणों को लेके आता हूँ। तो उन्होंने कुछ चार ब्राह्मणों के परिवार को यहाँ पर लेके आए वो, और वो चार ब्राह्मण जब आए तो उन्होंने यहाँ पर का जो डीटी वर्शिप है ना, अर्चा विग्रह सेवा की पद्धति को बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर खड़ा किया। तो जब आए तो दो ब्राह्मण अपने दो विट्ठल के गुरु ने दिए हुए मृतियों को भी लेकर आए, वो भी उधर आपको मिलेंगे, दो विट्ठल जी और एक कोडुगेले कृष्ण, उडुपी कृष्ण का भी प्रतिकृति भी वहाँ पर मिलेगा आपको। ये सभी उसी ऑल्टर में है लेकिन बहुत छोटे से है कि आपको नजर नहीं आते हैं, नजर आए इसलिए फोटो निकाल के रखा हुआ है। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले वाले वेंकट रमणा उनके दो पत्नियाँ, बीच में उग्र नरसिम्हा, इसके नीचे बिंदु माधव दो पत्नियाँ, फिर विट्ठल दो विग्रह, व्यासदेव का विग्रह और कोडुगल कृष्ण यानी उडुपी कृष्ण का विग्रह, और शागलाम चला बड़े बड़े बर्तन में ऐसे सोने के कंटेनर में रखी हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।